ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की दूरी को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल माध्यम में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने व्यापार, समावेशी विकास, सतत विकास के लक्ष्यों में प्रगति तथा महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के प्रति भी भारत की वचनबद्धता दोहराई। समावेशी विकास में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे डीपीआई की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में एक ग्लोबल डीपीआई डिपॉजिटरी का गठन इस संबंध में आम सहमति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति के लिए एक सामाजिक कोष की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि भारत इस कोष में 2,50,00,000 रूपये का शुरूआती योगदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में अक्षरा विद्यालय और कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगे। वे स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पा वारापू फाउंडेशन भी जाएंगे। श्री धनखड़ नेल्लौर में वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वें वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें बेंगलुरू मेट्रो का तीसरा चरण, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो के पहले चरण का विस्तार शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब 21 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है, जबकि 10 साल पहले ये केवल 5 शहरों में थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण 2029 तक शुरू होगा। कोलकाता में आरजी कर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए ने सुबह 6 बजे से ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की है। संगठन ने इस मामले में न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। संगठन के अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगी, जबकि परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटें हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी जिलों में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जिले शामिल हैं। बांग्लादेश में कल अंतरिम सरकार के 4 और सलाहकारों को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें बंग भवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। नए सलाहकारों को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और अन्य सलाहकारों की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर तीनों सेना प्रमुख भी उपस्थित थे। देश की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से स्वदेश लौट आई। विनेश को महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाले प्रति घंटा समाचार बुलेटिनों के प्रसारण क्रम को संशोधित किया गया है। ये संशोधन 18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होंगे। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिन का प्रसारण पहले होगा, उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।